ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप सभी ने अभी इतना लाभ लिया एक्सरसाइज का, तंदुरुस्त और साथ साथ मंदुरुस्त भी होना चाहिए। तो कहते कि यह अलौकिक दरबार है हमारा परमात्मा पिता का, और यह अलौकिक दरबार महान विभूतियों से सजा हुआ है। समय प्रति समय हमारी राजयोगिनी दीदियां हमें बहुत अपने अनुभवों से लाभान्वित कर रही हैं, हमें अपने अनुभव शेयर कर रही हैं। तो ऐसे अलौकिक दरबार और विशेषताओं को सजाने के लिए आज हमारे समक्ष, हमारे बीच में विशेष रूप से पांडव भवन से इंदिरा दीदी जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। हम दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी, परम ओजस्वी बोल, त्याग तपस्या की मूरत, ऐसी प्यारी दीदी जी इंदिरा दीदी जी, आप 30 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और 20 वर्षों से आप समर्पित रूप से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप महाराष्ट्र गोंदिया से आपको ज्ञान मिला, आप वहां से निकली हुई हैं और सेवाओं की शुरुआत आपने हेडक्वार्टर माउंट आबू से ही की है। आपने नागपुर, मुंबई सेवा केंद्रों पर सेवा की हुई है और वर्तमान समय में आप 8-9 वर्षों से पांडव भवन में सेवाएं दे रही हैं। ऐसे आदरणीय दीदी जी का हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
ओम शांति। बहुत ही सुंदर गीत हम सब ने सुना। ज्योति बिंदु परमात्मा से ए मेरी आत्मा चल कर ले मिलन। तो इस गीत में जो दो हस्तियों का वर्णन आया, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो पिछले दो दिन में हमने आत्मा की पहचान भी प्राप्त की और परमात्मा की भी पहचान प्राप्त की। न सिर्फ पहचान प्राप्त की लेकिन उसकी अनुभूति भी की, है ना? तो राज्यों के कुल 3 कदम है। पहला कदम स्वयं को पहचानना, स्वयं का अनुभव करना, और दूसरा कदम है परमात्मा को पहचानना, परमात्मा को अनुभव करना, और तीसरा कदम है इन दोनों को पहचानने के बाद इन दोनों का कनेक्शन, मिलन। इसीलिए आज का टॉपिक क्या है? कनेक्टिंग टू द इटर्नल सोर्स। वो इटर्नल सोर्स क्या है? वो परमात्मा है। और पिछले 2 दिन में जब हमने आत्मा और परमात्मा को समझा तो ये तो बहुत क्लियर हो ही गया होगा कि आत्मा एक बैटरी के समान है और परमात्मा पावर हाउस। अब बैटरी की क्या विशेषता होती है? ज्यों ज्यों इस्तेमाल करते जाते हैं त्यों त्यों वो क्या होती जाती है? खाली होती जाती है। और अगर रिचार्जेबल बैटरी है तो क्या करना होता है, उसे पुनः पावर हाउस से रिचार्ज कर लेना होता है। लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो तो क्या हम समझते हैं आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है? हम समझते हैं ऐसा? क्या प्रूफ है कि जिससे पता चलता है कि आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है? वो बैटरियां भी जब अबाउट टू डिस्चार्ज होती है तो क्या वार्निंग मिलती है, प्लीज डोंट यूज इट, फर्स्ट रिचार्ज इट। व्हाई? क्योंकि जब बैटरी अबाउट टू डिस्चार्ज पर आ जाती है तो हार्मफुल रेडिएशंस उसमें से बहुत सारे निकलते हैं जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। और इसलिए बेटर है कि उसको यूज करने से पहले रिचार्ज कर लीजिए। तो आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसका क्या प्रूफ दिखाई देता है? उसका तो पता चलता है, गर्म भी महसूस होता है ना तभी जब बहुत बैटरी डिस्चार्ज होती है और यूज करते हैं। तो आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हुई है, उसका क्या प्रूफ दिखाई देता है? छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाना, छोटी छोटी बात में मेरे को तो बहुत गहरा घाव हो गया आपने ऐसा बोला मुझे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, थोड़ा सा किसी को देखा नहीं मेरे से आगे निकल गया, ईर्ष्या आ जाना, कोई बात जीवन में आई चिंतित रहना, और चिंतित रहते रहते सोचते सोचते जो जीवन में घटनाएं घटती रही उसको सोचते सोचते टेंस हो जाना, स्ट्रेस में आ जाना, और उसका अंतिम परिणाम डिप्रेशन में आ जाना, फ्रस्ट्रेशन में आ जाना, और जीवन के प्रति आशा का खत्म हो जाना, निराशा से जीवन घिर जाता है। आज मेजॉरिटी विश्व में यही सीन दिखाई दे रहा है, ऐसा ही सीन चल रहा है। तो ये प्रूफ है कि आत्मा रूपी बैटरीज क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है, और उसको फिर रिचार्ज करने की आवश्यकता है। अर्थात इस आत्मा रूपी बैटरी को परमात्मा रूपी पावर हाउस से कनेक्ट करके इसको रिचार्ज करना है, ताकि लाइफ जो नेगेटिविटी से भर गई है और जीवन जीते हुए भी जैसे जीवन जीवन नहीं लग रहा है, उसमें श्रेष्ठ परिवर्तन लाया जा सके। जीवन जो निराशा से भर चुका है उसमें आशा की किरण आ जाए। जीवन जो दुख अशांति से भर गया है उसमें खुशियां भर जाए, उमंग उत्साह आ जाए। तब सच्चे अर्थों में जीवन जो हमें उपहार के रूप में मिला है हम उसको क्या करेंगे, एंजॉय कर सकते हैं। और इसीलिए कहा आत्मा और परमात्मा का परिचय प्राप्त कर लेने के बाद बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि इन दोनों का कनेक्शन हम कैसे करें, ताकि जैसे ही आत्मा उस परमात्मा पावर हाउस से कनेक्ट हो जाए तो वहां की एनर्जी आत्मा बैटरी में भरती जाए। एक बार कनेक्शन कर देते हैं बैटरी को, हम करंट पर जोड़ देते हैं, प्लग में लगा देते हैं, उसके बाद हमारा कुछ काम रहता है क्या? करंट आता रहता है, बैटरी चार्ज होती रहती है। तो हमें भी क्या करना है, वो विधि सीख लेनी है जिससे मैं प्रॉपर वे में उससे कनेक्ट हो जाऊं। और जैसे ही मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, वहां से एनर्जी मुझ आत्मा में आती जाएंगी। तो क्या है वो विधि उससे कनेक्ट होने की? किसी को जब हम याद भी करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम उससे कनेक्ट ही हो जाते हैं ना। जब किसी को हम याद करते हैं तो क्या होते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। या हम जब शब्द यूज कर रहे हैं राजयोग, तो राज प्लस योग, अब योग माना ही क्या, जोड़, मिलन, कनेक्शन। तो किसका कनेक्शन, बहुत सारी चीजों का कनेक्शन हो सकता है। दो अंकों को भी जोड़ेंगे तो योग हो जाता है, दो वस्तुओं को भी जोड़ते हैं जैसे दूध में चीनी डाली तो योग हो गया, ऐसे ही हम किसी व्यक्ति को भी याद करते हैं तो ये भी योग ही हो गया, कनेक्ट हो जाते हैं हम। तो योग तो हमको करने आता है ना, हम व्यक्तियों को याद करते हैं ना, तो सीखने की चीज है क्या? एक छोटा बच्चा भी जब जन्म लेता है तो हम धीरे धीरे उसको उठना बैठना चलना फिरना सिखाते हैं बेशक, लेकिन सोचना हम सिखाते हैं, हम सिखाते हैं सोचना उसको, अपने आप वो सीख लेता है। उसके पापा उसको रोज ऑफिस जाने से पहले मिलते थे, किसी एक दिन नहीं आए तो वो क्या करता है, रोता रहता है। सासू जी कहेंगी वो क्यों रो रहा है बच्चा, उसको दूध पिलाओ, ये करो, सब कर लिया फिर क्यों रो रहा है, आज उसके पापा उसको मिलके नहीं गए हैं। माना सोच चलती है ना बच्चे की, हम थोड़ी सिखाते हैं उसको। तो जैसे श्वास लेना हम किसी बच्चे को नहीं सिखाते, अपने आप वो श्वास लेता है, जैसे सोचना भी हम उसको नहीं सिखाते, याद करना भी हम नहीं सिखाते, अपने आप वो याद करता है, ठीक ऐसे ही हमें भी याद करना तो सबको आता है ना। तो याद करना सिखाना की जरूरत नहीं होती है, तो जरूरत किसकी होती है, ये मन को तो आदत है सबके साथ कनेक्ट हो जाने की, मतलब किसी न किसी को याद करते रहने की। ये कभी खाली बैठता है, ये कभी किसी वस्तु को याद करेगा, कभी किसी वैभव को याद करेगा, कभी किसी स्थान को याद करेगा, कभी किसी घटना को याद करेगा, ये याद करता ही रहता है। तो योग तो आता है सभी को, लेकिन सीखना क्या है, राजयोग, कि जिस राजयोग में आत्मा याद करेगी परमात्मा को। बाकी सब थे योग, लेकिन जब आत्मा परमात्मा को याद करेगी वो होगा राजयोग। तो ये योग कैसे करें? आपने कभी ये अनुभव किया है कि हम किसी को याद करते हैं और उससे बात करने के लिए फोन उठाते हैं और सामने से फोन आ जाती है? किया है सभी ने अनुभव? ऐसे विज्ञान की दुनिया में इसको नाम देते हैं टेलीफोन टेलीपैथी, कि मुझे सोच आई फलाने के प्रति और उससे बात करने के लिए मैं फोन उठाने गया, तो मैंने जो की सोच आई, मेरी सोच क्या हो गई, उसने कैच कर ली और उसको भी सेम संकल्प आया कि चलो मैं उससे बात करता हूं, और वो इतना फास्ट हो गया कि मैं लगाने गया और वहां से आ गई, तो कई बार पता नहीं चलता मैंने डायल किया या वहां से, होता है ऐसा। तो इसको कहते हैं, विज्ञान कहता है इसको टेलीफोन टेलीपैथी। विज्ञान अगर इस बात को टेलीफोन टेलीपैथी ना भी नाम दे, टेलीफोन जब नहीं भी थे तब भी हम इसका अनुभव करते थे या नहीं करते थे? भले फोन नहीं आती थी, लेकिन उसका कोई मैसेज आ जाएगा, कोई व्यक्ति आ जाएगा कि उसी के बारे में बात करना शुरू कर देगा। होता है या नहीं होता है ऐसा? तो ये टेलीपैथी होता क्या है, हम जो सोचते हैं, जैसे ही सोच पैदा होती है वो वाइब्रेशन चारों ओर फैलने लगते हैं। तालाब में जैसे ही कंकड़ फेंकते हैं रिपल्स तैयार होते हैं, और वो जो रिपल्स तैयार होते हैं, वो जो खुला स्पेस उसको है, वहां पर वो आगे 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 केंद्र बिंदु से दूर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जहां तक उसको खुला स्पेस मिल रहा है। ठीक ऐसे ही मन रूपी जलाशय में, मन रूपी तालाब में भी जब हम विचार रूपी पत्थर फेंकते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और वो वाइब्रेशंस इतना बड़ा जो खुला आसमान है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, पूरे आकाश में, पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं। तो ये पूरा संसार वास्तव में क्या है, वाइब्रेशंस का एक समंदर है, तरंगों का एक समंदर है। आप सोच रहे, मैं सोच रही, वो सोच रहा, एक एक व्यक्ति की सोच चल रही है, वो वाइब्रेशन कहाँ जा रहे हैं, इस वायुमंडल में जा रही है, रेडियो में, टीवी में जो प्रोग्राम्स आते हैं, कैसे आते हैं, उन टीवी स्टेशंस पर, रेडियो स्टेशंस पर टावर लगे होते हैं ट्रांसमिशन के, और अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर एयर में छोड़ दिए जाते हैं। अगर आपके पास रिसीवर सेट है तो जिस फ्रीक्वेंसी पर जो प्रोग्राम रिले किया गया है उसी फ्रीक्वेंसी पर अपने रिसीवर सेट को ट्यून करते ही वो प्रोग्राम हम देखना या सुनना आरंभ करते हैं। मतलब हमारे सेट पर वो आवाज, वो दृश्य आना शुरू हो जाते हैं। तो पूरा खेल किसका चल रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि फलाने चैनल पर आज तक आ रहा है और हम अपने घर में वो आज तक देख रहे हैं, और अचानक से पड़ोसी आया, अरे आपके आज तक कैसे आ रहा है, मेरे टीवी में तो नहीं आ रहा है। अरे भाई, ये चैनल आपको अपने घर में देखना है तो आपके टीवी को उसी पर ट्यून करना पड़ेगा ना। आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोग्राम किस स्टेशन पर, किस फ्रीक्वेंसी पर आना है, ताकि उसी फ्रीक्वेंसी पर आप जब उसको ट्यून करेंगे तब वो प्रोग्राम आपको मिलेगा। तो भले आपने ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं की थी, लेकिन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी तो फिर भी वही नजदीक थी ना, वही नजदीक थी। तो कहने का मतलब, हम जो सोचते हैं वायुमंडल में दूर दूर तक हर जगह उपलब्ध हो जाता है। तो जैसे ही मैंने किसी व्यक्ति को याद किया, किसी मित्र को याद किया, मेरे वाइब्रेशन वायुमंडल से होते हुए उस तक पहुंच जाते हैं और वो कैच कर लेता है, बशर्ते वो मेरे से उस समय ट्यून्ड हो। अगर वो ट्यूनिंग नहीं होगी तो मैंने भले उसको याद किया पर वो मुझे उस समय याद नहीं करेगा। होता है ना, कई बार माँ इंडिया में है, बेटा विलायत में है, माँ का दिल ज्यादातर बच्चे से कनेक्टेड होता है, तो बच्चे को वहां कुछ होता है, माँ को फीलिंग आती है और माँ कहती मेरे बेटे को वहां कुछ हुआ है, घर में कहते तेरा दिमाग पता नहीं खराब हो गया है, वहां बेटा अच्छी से रहे, तू ज्यादा सोचती है ना इसलिए तेरे को ऐसा लगता है, नहीं नहीं मेरे बेटे को कुछ हुआ है, और वहां से तब फोन आता है, मम्मी आज ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठोकर हो गई, वो हो गई, और फिर वो कहती देखा मैं तुमको पहले ही बोल रही थी ना। क्योंकि माँ जिस समय बच्चे के साथ घटना घट रही थी उसी समय उसके साथ क्या थी, ट्यून्ड थी, कनेक्टेड थी, इसलिए उसकी फीलिंग माँ की फीलिंग बन गई। क्योंकि विचारों का एक्सचेंज माना ही क्या, फीलिंग का एक्सचेंज हो जाएगा ना। मेरी जो मन की स्थिति होगी वो सामने वाले की मन की स्थिति बन जाएगी, जो सामने वाले की मन की स्थिति होगी वो मेरी। कनेक्शन का यही तो प्रभाव होता है ना। उदाहरण के लिए जैसे कहा दूध में चीनी डाला, तो दूध में चीनी डालते ही चीनी का प्रभाव दूध में आ गया ना। या अगर के दूध को चीनी में डाला तो चीनी में दूध का प्रभाव आ गया ना। तो कनेक्शन माना ही जहां दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो जब व्यक्ति व्यक्ति को याद करता है तो फीलिंग्स एक दूसरे की कैच करते हैं, और जिस प्रकार की फीलिंग कैच की वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। इसलिए कई बार हम देखते हैं बहुत अच्छे मूड में थे हम, अचानक से किसी को याद किया, उसकी कोई बात याद आई और हमारा चेहरा उतर गया। लोग कहते क्या हो गया तुमको अभी अभी, अभी अभी तो आप इतने खुश थे, तो क्या कहां से परिवर्तन आया। सामने वाले को जिसको याद किया वो भी कुछ ऐसी डाउन परिस्थिति में था, या उसने मेरे साथ कोई घटना ऐसे घटी थी कि जो याद करते ही मेरी स्थिति डाउन हो गई। तो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये है योग कि जब व्यक्ति व्यक्ति के साथ ये खाली नहीं बैठेगा, इसको संग की जरूरत है। तो एक बात इसीलिए कहते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समूह में रहता है, उसे संग की आवश्यकता है। तो संग किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता है। मतलब वो किसकी बात है, मनुष्य माना उसके पास मन है, मनुष्य का मन संग किए बिना रह नहीं सकता। और दूसरी बात, संग का रंग लगे बिना रह नहीं सकता। अब ये दो फैक्ट हमारे पास है, क्या संग किए बिना हम रह नहीं सकते, और दूसरा संग का रंग लगे बिना रहा नहीं जा सकता। तो क्या करना होगा, संग कैसा है उस पर अटेंशन रखना पड़ेगा। किसको याद कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, उस पर अटेंशन रखना पड़ेगा। साइंटिफिकली भी इस बात को करीब आज से 3-4 साल पहले, शायद सितंबर 2014 में इस टेलीपैथी को, जिसको हम वर्षों से अनुभव करते आए हैं, विज्ञान का जमाना है ना, हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है, तो साइंस ने भी इसको प्रूफ करके दिया है कि एक व्यक्ति को मुंबई में बिठाया, एक व्यक्ति को पेरिस में बिठाया, और दोनों को उस स्थान पर कंप्यूटर से कनेक्ट, इलेक्ट्रोड से उसके हेड को, ब्रेन को इलेक्ट्रोड्स के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, और ये व्यक्ति जो मुंबई में बैठा है उसको कहा आपको कुछ लिखना नहीं है उस व्यक्ति के प्रति जो पेरिस में बैठा है, क्योंकि वो दोनों को कनेक्ट करना चाहते थे। तो कहा लिखना, क्योंकि हमारा कनेक्शन कम्युनिकेशन उसके 3 लेवल होते हैं। हाव भाव के द्वारा हम अपनी मैसेज कन्वे करते हैं, या एक्शन करके, उदाहरण के लिए मोबाइल का जमाना है, हम कुछ वहां पे टाइप करते हैं, सामने वाला उसको पढ़ता है ना। हम कुछ बोलते हैं, सामने वाला उसको सुनता है, और तीसरा हम सोचते हैं, सामने वाला उसको कैच करता है। तो ये 3 लेवल के कम्युनिकेशन जो है, कर्म लेवल पर हाव भाव लिखना करना जो भी है, और दूसरा वाणी के लेवल पर, और तीसरा सोच के लेवल पर। तो ये 2 तो दिखाई पड़ते हैं, सभी अनुभव कर रहे हैं, है ना। अब ये तीसरा जो था इसको वैज्ञानिकों को देखना था, तो कहा जो मुंबई में भाई बैठा है उसको कहा कि आपको पेरिस में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कुछ लिखना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ क्या करना है उसके प्रति कुछ सोच पैदा करनी है, उसके प्रति कोई संकल्प करना है। और जैसे ही उसने उसके प्रति संकल्प क्रिएट किया, क्योंकि उसका ब्रेन इलेक्ट्रोड के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्टेड था, तो वो कंप्यूटर पे वो ग्राफ तैयार हो गया सोच के रिलेटेड, वो ईईजी पैटर्न उसमें दिखने लगा। और वो व्यक्ति जो पेरिस में बैठा था, सेम मोमेंट उसके कंप्यूटर पर भी सेम ईईजी पैटर्न जो मुंबई वाले कंप्यूटर में आया उधर भी आ गया। और उस व्यक्ति से पूछा कि आपको थॉट कौन सी आई कि जिसके बलबूते पर ये स्क्रीन पर ईईजी पैटर्न आया। और जब वो थॉट और इसकी थॉट, मतलब पेरिस में बैठे हुए व्यक्ति ने जो थॉट कैच की, वो मुंबई में बैठे व्यक्ति ने जो थॉट क्रिएट थी, दोनों को मिलाया, दोनों एक। उसको पूछा आपने क्या सोचा, कहा मैंने विश करने के लिए उसको हेलो किया। और उसको पूछा आपने क्या कैच किया, मुझे ऐसा लगा वो मुझे हेलो कर रहा है। और साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन हम सब अनुभवी हैं, जो कहा विज्ञान ने जब प्रूफ भी नहीं किया था तब भी हम ये टेलीपैथी कर रहे थे ना अनुभव। तो कौन कर रहा होता है, मन का मन से कनेक्शन हो जाता है ना। तो विज्ञान भले उसको ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन नाम दे, लेकिन हम अपने अनुभव से कह सकते हैं ये कौन सा कम्युनिकेशन है, माइंड टू माइंड, सोल टू सोल कनेक्शन है, सोल टू सोल कम्युनिकेशन चल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट विज्ञान की जगत में जब सामने आया तो एक सावधानी रखना भी सबने शुरू किया और करना ही चाहिए। वो कौन सा, सोचने से भी पहले सोच ले हम कि क्या सोच रहे हैं, क्योंकि प्रायः क्या होता है जो हम करते हैं दूसरों को दिखता है, ये मुझे मालूम है। जो हम बोलते हैं दूसरे को सुनाई पड़ता है वो मुझे मालूम है, पर मैं जो सोचती हूँ दूसरा कैच कर लेता है, इससे हम थोड़ा क्या है, अनभिज्ञ है। और इस कारण से हम इस दो लेवल पर, करने के लेवल पर कि हम क्या कर रहे हैं उस पर अटेंशन रखते, नहीं तो सामने वाला क्या बोलेगा। हम क्या बोल रहे हैं उस पर भी अटेंशन रखते हैं, नहीं तो सामने वाले तक चले जाएगी तो बात, लेकिन इस पर अटेंशन नहीं रखते क्योंकि क्या सोचते हैं ये तो मेरे बंद कमरे में चल रहा है, किसको क्या पता है। तो बचपन में सिखाया गया था सोच समझ कर किया करो, और सिखाया सोच समझ कर बोला करो, और परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं सोच समझ कर सोचा करो। क्या करना है, सोच समझ कर सोचना है, क्योंकि वो बात वहां तक पहुंच जाती है। तो जब व्यक्तियों में बात वहां तक पहुंचती है तो वो बात परमात्मा तक पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है, हाँ पहुंच सकती नहीं, क्योंकि वो भी क्या है, एक आत्मा ही तो है। तो हमें भी अब क्या करना है, परमात्मा के साथ कनेक्शन करना, माना परमात्मा के बारे में सोचना। आज दिन तक हम सभी परमात्मा को याद करते आए हैं, नई बात नहीं है कि हम याद नहीं करते उसको, हम सभी परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन जो बताया ना कम्युनिकेशन के तीन लेवल, हम दो लेवल तक ही रुके हुए थे, तीसरा लेवल हम यूज करते ही नहीं थे। घंटी बजा लेते हैं, आरती फिरा लेते हैं, माला जाप कर लेते हैं, मंत्र बोल लेते हैं, श्लोक पढ़ लेते हैं, आरती गायन कर लेते हैं, फूल फल नैवेद्य चढ़ा लेते हैं, धूप दीप अगरबत्ती करते, ये सब कौन से लेवल पे चल रहा था? करने और बोलने के लेवल तक का था। और मन तो क्या करता था? वो करते हुए भी इसी दुनिया में किसी के साथ कनेक्ट हो जाता था, है ना? और इसलिए उस परमात्मा को याद करने के बावजूद भी उसकी जो एनर्जी मेरे पास आनी चाहिए थी और मुझ आत्मा बैटरी को रिचार्ज हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। क्योंकि याद माना ही योग, तो याद तो हम कर ही रहे थे पर मन से नहीं कर रहे थे, मन से उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे। तो यहां पे एम्फेसिस इसी बात पर दिया जाता है, आप सभी परमात्मा को याद करते हैं, ये नई बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखो, इस लेवल पर उससे कनेक्ट हुआ करो अभी, सिर्फ इस और इस लेवल पर नहीं। क्योंकि इस लेवल पर और इस लेवल पर हमने करके देखा, बैटरी तो चार्ज होने के बजाय और क्या हुई? और ही डिस्चार्ज हुई। जबकि उसको याद करने का मकसद ही क्या है? कि मेरी बैटरी क्या हो जाए? चार्ज हो जाए। तो जो चार्जिंग मेथड में थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो रही थी, उस मिस्टेक को करेक्ट करना ही राजयोग है, कि उसके साथ मन से कम्युनिकेट करें। जब उसको हम याद करें, मन उसमें लगे, क्योंकि इसको संग चाहिए बात थी ना, इसीलिए सभी ने क्या सिखाया, सत्संग करो। क्या करो? सत्संग करो, सिर्फ एक पिता परमात्मा को ही याद करो। तो हमने दोनों काम जरूर किए, याद भी किया, सत्संग भी किया। हमारी भाषा में याद करना क्या था? हाथों के लेवल पर और वाणी के लेवल पे जो करना था वो करके हमने उसको याद किया। और सत्संग के नाम पे भी क्या किया? जहां कोई एक गैदरिंग इकट्ठी हुई है, स्पिरिचुअल कहो धार्मिक कहो, वहां इकट्ठे हो गए, वहां शामिल हो गए, वहां पूजा पाठ चली, कोई किताब आध्यात्मिक खोल के पढ़ी गई, उसको समझाया गया, वो सुना, प्रसाद लिया, वापस आ गए, कहा सत्संग कर लिया मैंने, जो सुना जो सीखा उसको प्रैक्टिकल में उतारा ही नहीं। हमने शरीर को वहां जाके बिठा दिया, वहां जाके सुन लिया, प्रसाद आदि ग्रहण कर लिया और हमने कहा सत्संग कर लिया, पर मन कनेक्ट हुआ उसमें नहीं। आज एक लड़की की भी अगर शादी होती है ना, और अगर वो सुहाग रात के दूसरे ही दिन घर आ जाती है, आजकल ऐसे केसेस बहुत चल रहे हैं, लेकिन पिता के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो लड़की जब घर आती है, पिताजी पूछते हैं, बेटा धूमधाम से समाज के बीच में मैंने तेरी शादी करा दी और तू सुहाग रात के दूसरे दिन यहाँ आ गई, ये क्या किया तुमने? कहती है, पापा जिससे आपने मेरी शादी कर दी है ना, उसका मन तो किसी और लड़की में लगा है, मैं क्या करूंगी उसके पास रह के। तो शरीर से तो रही तभी तो पता चला, लेकिन उतना ही काफी नहीं था ना, क्या चाहिए था उसको? मन का कनेक्शन चाहिए था। शरीर से साथ में रहने से क्या फायदा? शरीर से तो हम सत्संग में गए, लेकिन मन नहीं रंगा ना उसमें, मन रंगा ही नहीं उसमें। इसका उल्टा क्या होता है? दो व्यक्ति पति पत्नी, मन दोनों के मिले हुए, हृदय दोनों के मिले हुए, विलायत में रहता है पति, साल में एक बार आता है, लेकिन फिर भी वो जोड़ी सलामत है। क्यों? मन से कनेक्टेड है। तो जब कनेक्शन की बात आती है, उसमें इंपॉर्टेंस इसका है, मन का। तो भगवान को याद करने के नाम पर मंत्र जाप किया, पूजा पाठ किया, यज्ञ किया, तप किया, उपवास किया, आरती गायन किया, तीर्थ यात्राओं पर गए, बहुत कुछ किया, धूप दीप अगरबत्ती जलाई, फूल नैवेद्य किया, लेकिन फिर भी भगवान से क्या रहे, दूर ही रहे। तो राजयोग वो टेक्निक है जो भगवान से करीब लेकर आती है, और उसका आधार है माइंड टू माइंड कनेक्शन, मन उसमें लगा दिया जाए। तो क्लियर हुआ कि क्यों कम्युनिकेशन करना है और किस लेवल पर करना है। क्लियर। अब अगली बात आती है कि ठीक है, समझ में आ गई कि क्यों कम्युनिकेशन करना है जी। राज, राजयोग दो शब्द है ना, राज प्लस योग, योग माना तो क्लियर हो गया। राज मतलब, राज क्या होता है, राज माना राजा, और राज के नीचे अगर बिंदी लगा दिए ज तो होता है राज, माना सीक्रेट, है ना। राज माना भाई ये राजकरण में है, ये राजनीति में है, ये राजा है, राजा माना जो ऊंचा है, है ना। तो ये जो योग है, दुनिया में जितने भी योग प्रचलित है, वैरायटी योग है ना, उन सबसे ऊंचा योग है। क्यों ये उन सबसे ऊंचा योग है, क्योंकि इस योग में आत्मा सबसे ऊंची हस्ती परमात्मा से योग लगा रही है, परमात्मा से कनेक्ट होने जा रही है। तो एक तो ऊंची हस्ती से कनेक्ट होने जा रही है, और वो भी आत्मा होने जा रही है, और दूसरा उस ऊंची हस्ती से ऊंची प्राप्तियां करने जा रही है, इसलिए राजयोग। और दूसरा कहा कि जग के नीचे बिंदी लगा दो तो राज माना सीक्रेट, रहस्य। ये राजयोग में सफलता तब मिलती है जब पहले ये रहस्य क्लियर हो जाए कि वो आत्मा जिसने परमात्मा को याद करना है वो है क्या, और वो परमात्मा जिसको आत्मा याद करने जा रही है वो है क्या। जब ये राज क्लियर हो जाते हैं, इन राजों के आधार पर जब मैं उससे कनेक्ट होने जाती हूं, मेरे जीवन में उतनी ही ऊंची प्राप्तियां होना शुरू हो जाती है, इसलिए कहा राज योग। क्लियर। तो ये राजयोग क्यों चाहिए, वो क्लियर, वो भी क्लियर हो गया किस लिए चाहिए। अब बात आती है कि बात तो समझ में आ गई कि परमात्मा को क्यों याद करना है और किस लेवल पर याद करना है, ये क्लियर हो गया। लेकिन एक शिकायत रहती है हमेशा, हम याद तो करना चाहते हैं पर क्या करें, वो याद फिर भूल जाते हैं। वैसे भी देखो, ऐसे दुनिया की किसी भी, मतलब हर एक को हम याद नहीं कर सकते हैं। आज 750 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, आप हर एक को याद कर सकते हैं, हर एक को याद कर सकते हैं। जिनको जानते हैं उनको ही याद करते हैं ना, जिनका परिचय है, जिनको जानते हैं, जिनसे संबंध है, जिनसे स्नेह है, जिनसे कुछ प्राप्ति है, उनको ही याद कर सकते हैं ना, सबको तो नहीं कर सकते। तो याद के ये चार आधार है। कोई मेरी यादों में बसे उसके लिए पहला, उसकी मुझे पहचान चाहिए, उसका परिचय चाहिए। जैसे जब घरों में शादियां होती है ना, तो लिस्ट बनाते हैं निमंत्रण किस किस को देना है, तो परिचय वाले तो बहुत होते हैं लेकिन जल्दी याद नहीं आते कभी कभी, है ना, इसलिए लिस्ट बनानी पड़ती, कोई छूट तो नहीं गया। लेकिन जो संबंधी होते हैं फटाफट नाम याद आते हैं, नहीं आते हैं, जिनसे जितना ज्यादा क्लोज रिलेशन फटाफट याद आते हैं, है ना। तो एक तो पहचान चाहिए, और पहचान में थोड़ी सी याद में मेहनत लगती है, क्लियर। और दूसरा संबंध चाहिए, और फिर संबंध में जितना घनिष्ठता होगा उतना जल्दी याद आएगा। और घनिष्ठता माने जब स्नेह होगा उसमें, तो तीसरा स्नेह चाहिए, और चौथा कि उस घनिष्ठ संबंध से अगर मुझे कुछ प्राप्तियां भी हो रही है तो वो तो यादों में बसा रहेगा ना। इसलिए जब कोई मिलते हैं घनिष्ठ लोगों से, अरे आप आजकल आप हमें याद नहीं करते, अरे हम आपको भूलते कहाँ है जो याद करने की बात है, बोलते नहीं बोलते हमें से, आप तो हमारी यादों में सदा ही बसे रहते हो। तो याद करने के चार आधार होते हैं, पहचान, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। तो भगवान को हम याद करते हैं फिर भी याद नहीं टिकती, ये जो हम सबको शिकायत है उसका एक मूल कारण है उसकी सही पहचान नहीं है। हमने भल अपनी अपनी आस्था के अनुसार एक भगवान की छवि अपने दिल में जरूर बिठाई है, लेकिन उसके बावजूद अनेकों भगवान की छवि भी हमारे दिल दिमाग में घूमती रहती है। और जब जीवन में कोई बात आती है तो जिसमें मेरी आस्था है उसको मैं याद करती हूँ, उसकी मैं पूजा करती हूँ, उसका मैं पाठ करती हूँ, लेकिन जब वो बात का सलूशन नहीं आता, कोई आकर कहता है मैंने तो इसकी पूजा की ना, मेरे को तो मेरी मन की मुराद हासिल हो गई, आप इसकी पूजा करके देखो ना, फलाने ने आप हनुमान चालीसा किया, नहीं मैंने दुर्गा चालीसा किया, मेरे को ना फल मिल गया। तो भगवान के नाम पर जो एक तस्वीर होनी चाहिए मेरे सामने, वो हमारी रोज क्या हो रही है, बदल रही है। तो मन टिके तो कैसे, याद करना, उसमें मन टिकाना, एकाग्र माना सामने एक, एकाग्र का मीनिंग क्या होता है, अग्र में सिर्फ एक हो। अब यहां अग्र में कितने लोग आ रहे हैं, एक आ रही तस्वीर उसको हटा के दूसरी रख रहे, दूसरी आ रही उसको हटा के तीसरी, तो उसको तो एकाग्रता नहीं बोलते ना। एकाग्रता का अर्थ ही है एक प्लस अग्र, अग्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही हो। तो जो शिकायत है कि भगवान में मन टिकता नहीं है, एकाग्र नहीं होता है, क्योंकि भगवान के नाम पर हम एक को नहीं रखते अनेकों को रख देते हैं, तो मन क्या होगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, अभी विश्वास ही नहीं बैठा है कि यहां से प्राप्ति होगी, यहां से होगी, यहां से होगी, यहां से होगी, तो कभी इधर डोल जाता है मन, कभी उधर डोल जाता है, कभी उधर डोल जाता है। दूसरा, तो इसीलिए सबसे पहला काम यहाँ किया जाता है उससे कनेक्शन आप जोड़ सको, इसलिए पहले उसकी सही पहचान प्राप्त कर लो, तो वो सब आपको मिल चुकी। अब दूसरी बात है कि संबंध चाहिए, हमने उसको गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव द्रविणम त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। दुनिया में तो एक एक के साथ एक एक रिश्ते होते हैं, ये मेरी माँ है तो ये मेरा पिता है तो ये मेरा भाई है, लेकिन उसके लिए क्या कहा, एक ही है लेकिन तू माँ भी है, तू पिता भी है, तू सखा भी है, तू बंधु भी है, तू टीचर भी है, तू गाइड भी है, क्या क्या वर्णन करूं, जितने भी रिश्ते होते हैं सब तेरे साथ है मेरे। गाया गाया ना सभी ने, निभाया, अनुभव किया, गाने तक गा रहे हैं, यहां तक कि हम पूछते हैं आपस में, आप भगवान को मानते हो, हाँ सब लोग कहते हैं भगवान होता है, मैं भी मानता हूं। अच्छा आप भगवान को माता पिता समझते हो, हाँ सब लोग कहते हैं वो हमारे माता पिता, मैं भी मानता हूं, मैं माता पिता है वो मेरे, मानते हैं, लेकिन वो संबंध रखा, मानना और संबंध रखने में अंतर होता है नहीं होता है, संबंध भी तो होना चाहिए ना, हमारे उसके साथ संबंध कितने गहरे हैं ये कहां से पता चलता है, आज जीवन में जब भी कोई बात आती है, चाहे वो खुशी की बात आई हो, चाहे वो प्रॉब्लम वाली बात आई हो, हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। किसको शेयर करते हैं सबसे पहले? सबसे पहले किसको शेयर करते हैं? हमारी जो लिस्ट है कि ये मेरे आत्मीयता वाले संबंध है, उसमें जो टॉप लेवल पर है, जिनकी हमारी आत्मीयता बहुत बहुत गहरी है, वो हमारी आत्मीयता वाली लिस्ट में एकदम टॉप है, उनसे हम पहले शेयर करते करते नहीं करते। लेकिन जब देखा कि उनके साथ शेयर करके मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो उस लिस्ट में जो सेकंड है उसको शेयर करते हैं, वहां से भी नहीं मिला तो तीसरा। ऐसे करते करते लिस्ट भी खाली हो जाती है, लेकिन समाधान सॉल्यूशन आंसर नहीं मिलता है, फिर किसको शेयर करते हैं? फिर किसको शेयर करते हैं? भगवान को। क्या कहते हैं? मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, मैंने सबसे पूछ लिया, किसी के पास इसका आंसर नहीं, मैंने तो अभी भगवान के ऊपर छोड़ दिया। पता चला कितना घनिष्ठ है वो मेरा, कितना घनिष्ठ है। लास्ट नंबर दिया ना उसको, और वो भी इधर नहीं बना तब। अगर इधर कहीं बन गई होती बात तो तब तो वो होता ही नहीं। तो पता चल रहा है मेरे उसके साथ जो संबंध है कैसे वाले हैं। वो तोते को बोलते हैं ना, तोता तो सीख जाता है, तो तोते को सिखाया तोताराम इस नलके पर नहीं बैठना, लेकिन तोताराम क्या करता है, नलके पर बैठकर बोलता है नलके पर नहीं बैठना। तो हम भी कहीं वही तो नहीं कर रहे, बोल तो रहे तू मात पिता, लेकिन मात पिता का संबंध निभा रहे है नहीं। तो उसके साथ संबंध जोड़ने की जरूरत है। एक अच्छा संबंध किसको कहा जाता है? एक अच्छा वेंटिलेशन किसको कहा जाता है? कि इस तरफ भी खिड़कियां हो, इस तरफ भी खिड़कियां हो, हवा इस खिड़की से आते हुए, यहां से चलते हुए उस खिड़की से निकले, और फिर उस खिड़की से आते हुए, यहां से चलते हुए इस खिड़की से निकल जाए, इसको कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन, द बेस्ट वेंटिलेशन। ऐसे संबंध बेस्ट कैसे होंगे? हम जिनके साथ हमारे संबंध है उनके लिए सोचे, वो हमारे लिए सोचे, हमारा आपस में एनर्जी एक्सचेंज हो, और वो एनर्जी एक्सचेंज भी बहुत प्योर, पवित्र, शुद्ध, दिव्य। आपस में भी रिश्तों में एक्सचेंज कई बार होता है, लेकिन अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो क्या कहते हैं, वो तो ऐसे ही स्वार्थी व्यक्ति है, बोलते नहीं बोलते हैं। तो पवित्रता, निस्वार्थता, वो चाहिए पवित्र संबंधों में, उस एनर्जी का एक्सचेंज। ऐसे ही जो क्रॉस वेंटिलेशन का, लेकिन वो बदबू वाली अगर आ जाए तो हवा, तो क्रॉस वेंटिलेशन होते हुए भी अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो प्योर हवा भी कैसी होनी चाहिए? साफ, स्वच्छ, सुगंधित। तो प्योर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी संबंधों में, इसको कहते हैं संबंध, उसको कहा स्नेह। वरना आजकल हम क्या कहते हैं, हाँ रिश्ते में तो वो मेरे चाचा जी लगते हैं, परंतु हमारा ऐसा कोई उनके साथ उतना है नहीं। रिश्ते में मामा जी क्यों लगते हैं? क्योंकि मैंने जिस घर में जन्म लिया, उनके जिनके साथ रिश्ते, मेरे भी उनके साथ रिश्ते बन गए, वो तो मुझे अपने आप मिल गए। लेकिन वो जो अपने आप मिले हुए रिश्ते हैं, उसमें अगर प्योर एनर्जी एक्सचेंज होगा, तब वो लगेगा हाँ ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरे अपने हैं। नहीं तो लगते तो है मेरे मामा जी, लगती तो है मेरी बुआ, परंतु हमारा इतना कुछ है नहीं। तो एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं हुआ ना, क्योंकि स्नेह की कमी है। तब कहा, याद कब आती है किसकी? एक तो पहचान, दूसरा संबंध, और संबंध में स्नेह, जिसको हम कहेंगे आत्मीयता, और चौथा प्राप्तियां। अगर उस स्नेह वाले संबंध से मुझे कुछ न कुछ मिलता ही रहता है, वो भूलेगा मुझे? वो तो यादों में समाया रहेगा। अब ये चार बातें परमात्मा के साथ लगानी है मुझे, और तब देखना कि परमात्मा ही मेरे यादों में बसे रहेंगे। तो क्यों परमात्मा ने मेरे यादों में बसा रहना चाहिए, उसका थोड़ा सा और एक खुलासा कर दे। कहा, इसको संघ की जरूरत पड़ती है, संघ के बिना ये रह नहीं सकता है। तो मेजॉरिटी जो हमने महसूस कर लिया कि सभी बैटरीज क्या है, अबाउट टू डिस्चार्ज, इस कंडीशन तक पहुंच गई है, माना सभी बैटरीज कौन से वाइब्रेशन रेडिएट कर रही है वो भी हमने देख लिया। अगर ये उनके साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, और पहले ही देखा संग का रंग होगा, प्रभाव पड़ेगा उनकी मन, जिसको भी मैं याद करूंगी उसके मन की स्थिति क्या हो जाएगी, मेरे मन की स्थिति बन जाएगी ना। ये दो ग्लास है, इसमें ग्लास पानी है, इसमें भी पानी है, ये 50% भरा है, ये 25% भरा है। मैं इसको कनेक्ट करती हूँ ट्यूब बीच में लगाकर, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, ज्यादा वाले में से कम वाले में जाएगा या कम वाले में से ज्यादा वाले में जाएगा? ज्यादा वाले में कम वाले में से जाएगा, ज्यादा वाले में से कम वाले में जाएगा, और लेवल पर आके ट्रांसफर रुक जाएगा, ऐसा ही होता है। और दूसरा, अगर ये वाला पानी, समझो दोनों में बराबर पानी भरा पड़ा है, लेकिन ये पानी विथ सॉल्ट है, ये पानी विदाउट सॉल्ट है। अब मैं ये जो विथ सॉल्ट है इसको इसमें डालती हूं, क्या होगा? ये जो विदाउट सॉल्ट था इसमें सॉल्टीनेस आ जाएगा, इसमें नमकीनपना आ जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा करती हूं, ये वाला उठा के इसमें डालती हूं, तो क्या होगा? इसका सॉल्टीनेस डाइल्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि विदाउट साल्ट का आया। समझ में आ रहा है? अब जिनके साथ ये मन कनेक्ट होता है, ऑलरेडी हम सब डिस्चार्ज बैटरी, कोई 30 पे रह गया, कोई 20 पे रह गया, कोई 15 पे रह गया, है ना। तो सपोज मैं अभी 30 में हूं, जिससे कनेक्ट हो रही हूं वो 25 पर है, तो क्या हो जाएगा? मेरा भी ड्रेन होके उसके पास चला जाएगा। तो ऑलरेडी हमारी बैटरी डिस्चार्ज, और इन्हों के साथ डिस्चार्ज बैटरी के साथ कनेक्ट होते होते, और दूसरा कहा कि मेरे इसमें चलो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है अभी, लेकिन मैं उसको कनेक्ट हो जाती हूं जिसको, तो क्या हो जाएगा उसकी नेगेटिविटी। और इसीलिए क्यों फास्ट स्पीड हो गई है बैटरी डिस्चार्ज का, ऐसा ही होता है ना। पहले धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है बैटरी, लेकिन बाद में उसका रेट फास्ट, और उसका कारण ये होता है। और इसलिए इस परमा इसको उसके साथ जोड़ना है, क्योंकि वहां पे ये बातें नहीं है, क्योंकि उसकी महिमा आपने कल देख ली, वो क्या है, पावर हाउस, माना जो सदा भरपूर रहता है, सदा भरपूर रहता है, चाहे कितने ही लोग उससे कनेक्शन ले लेना, वो खाली होने वाला नहीं है। जो यहां पर देखा था कि लेवल कम हो जाएगा, वो वहां पर नहीं होगा। और दूसरी बात, वहां पे नेगेटिविटी की कोई मार्जिन नहीं। क्या उसकी महिमा सुनी, सागर जितनी तो महिमा है, लेकिन कौन से गुणों की? प्यार का सागर है, नफरत का सागर है? प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिमान है, सत्चित आनंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है, आनंद का सागर। तो ऐसे परमात्मा के साथ जब कनेक्ट होंगे, हमेशा हमेशा मेरी बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी, उसकी प्यूरिटी, उसकी दिव्यता, उसकी शांति, आनंद का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसलिए जो कहा कि योग सीखने की बात नहीं है, सिर्फ अटेंशन रखने की बात है कि किसको याद कर रहा है ये मन। तो अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे तो आदत के अनुसार यही कहीं चला जाएगा, ड्रेन होने के चांसेस है, यहाँ सॉल्ट नहीं था, सॉल्ट आ जाने के चांसेस है। लेकिन अगर अटेंशन रखेंगे कि उसके ही साथ कनेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी। उतनी मिठास नहीं थी लेकिन उस मीठे परमात्मा से मिल मिलकर उसकी एनर्जी ले लेकर जीवन में मिठास आ गई, जीवन में प्यार आ गया, जीवन में शांति आ गई। और ये जब मेरे जीवन में आएगा तो फिर मेरे जीवन से मैं जिनके साथ रहती हूँ उन तक भी तो पहुंचेगा, तो संबंध ठीक हो जाएंगे। और मेरे यहाँ पर आएगा तो इधर भी तो आएगा। हम क्या करते, हमने और एक छोटी गलती की परमात्मा को याद करने में। हमने क्या किया कि परमात्मा को जब याद किया ना, तो हमने इस दुनिया की कोई जो हमारी जरूरतें हैं कहा वो पूरा कर दो। हमारी जरूरतें क्या हो सकती हैं, शरीर में प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसको ठीक कर दो। पैसे की कमी है, उसको ठीक कर दो। घर में बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, फलाना काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो ठीक कर दो। एक मकान रेंट पर है, अपना खुद का होना चाहिए, अगर खुद का है तो अच्छा बड़ा बंगला चाहिए। यही हमारी जरूरत है फिजिकल। इसमें से ही कोई बात उसको रख देते हैं और कहते मेरी पूरी कर दो। और जब पूरी नहीं होती है तो, पूरी नहीं होती है तो उससे थोड़ी दूरी बढ़, क्या भगवान को याद करने का, भी वो सुनता है क्या, कुछ तो नहीं करता, जो कुछ है मैं नहीं तो करना है ना, होता है ना ऐसे मन में। यहाँ पे हमारी छोटी मिस्टेक क्या हुई है कि परमात्मा कहता है, क्योंकि परमात्मा एनर्जी है और एनर्जी एनर्जी का कनेक्शन होगा ना। रबर की दो तार, तार जैसे ये है, ये करंट तो अंदर की तार में बह रहा है ना, ऊपर तो रबर किस लिए है, सेफ्टी के लिए है। अगर ये कट जाए और मैं उसको गांठ लगा के बांधूं और कहूं माइक चालू हो जाए, हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिस जहां करंट बह रहा था उनको तो कनेक्ट ही नहीं किया। तो परमात्मा को जब याद कर रहे हैं, हम क्या उसको ठीक करने के लिए बोल रहे हैं, मेरी हेल्थ ठीक कर दे, मेरे संबंध ठीक कर दे, मेरा बिजनेस ठीक कर दे। ये तो शरीर क्या है, रबड़ की तरह है ना। तो भगवान कहता है मेरा काम वो नहीं है। सूर्य इतना शक्तिशाली है कि घोर अंधियारी रात उसके आगमन से घोर उजाले में बदल जाती। इतना शक्तिशाली होते हुए भी वो बंगला उसको कहो बना के दो, देगा क्या, देगा क्या, उसका अपना एक दायरा है। ऐसे परमात्मा भी बेशक सागर है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसका अपना एक दायरा है, तो वो शक्ति दे सकता है। यहाँ पे कहते हैं मेरा काम है तुम्हारे इस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना, बशर्ते तुम मेरे से कनेक्ट हो जाओ। और एक बार ये बैटरी चार्ज हो गई, उसके बाद ये सब करने की ताकत तो तुमको अपने आप आ जाएगी। आज यही कमजोर लगा पड़ा है तो ये कमजोर अपने आप हो जाता है, यही कमजोर लगा पड़ा है तो संबंधों में बिगड़ आता जाता है। लेकिन इसको ही, जैसे कहा जड़ को ठीक कर दो, उस पेड़ में आने वाले सारे के सारे फल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जड़ को ठीक नहीं किया, ऊपर से पेड़ पत्तों को ठीक करने जा रहे तो क्या होगा, करते रहो लेकिन अच्छा कभी, वो टेम्पररी दिखेगा, मैंने धूल साफ कर दी पानी से, अच्छा दिखेगा थोड़ी देर में, क्योंकि जड़ से तो कीड़ा लगा हुआ है तो कीड़ा आ ही जाता है उसमें। तो हिट कहाँ करना पड़ता है, रूट पर, जड़ पर। तो परमात्मा भी कहते हैं मैं इसको ठीक करने आया हूं, आत्मा जो डिस्चार्ज हो गई है उसको रिचार्ज करने के लिए आया हूं, तुम ये मेरे में लगाओ। और जैसे ही तुम मेरे में इसको लगाओगे, ये चार्ज होना शुरू होगी। इसके चार्ज होते ही इसके साथ जो जो कनेक्टेड है वो सब में चार्जिंग अपने आप होती जाएगी। तो तब प्राप्तियों की जो बात आई, तो भगवान से भौतिक प्राप्तियां की कामना नहीं करें, लेकिन यहां प्राप्तियां होती रहे, यहां प्राप्तियां होती रहे, वो भौतिक प्राप्तियों के प्राप्त करने के मैं लायक बन जाऊंगा, तो फिर वो भी अपने आप पूरी हो जाएंगी, वो भी अपने आप पूरी हो जाएंगी। इसलिए ये नहीं कहे तो भगवान से ये नहीं मांगे तो किससे मांगे, मांगेंगे उसी से, शेयर जरूर उसी से करेंगे हर चीज, क्योंकि सारे संबंध उससे है, तो शेयर भी तो उसी के साथ सब करेंगे। लेकिन ये नहीं भूले कि उसके साथ शेयर भले करें, लेकिन इसको चार्ज करते चले, और वो इस लेवल पे करेंगे, इस लेवल पर शेयर करेंगे, माना उसके अम्मुख सम्मुख होंगे हम, तो उसके साथ अभी मुझे क्या करना है, वो गहरा संबंध जोड़ना है। तो कैसे जोड़े वो गहरा संबंध, कैसे उसकी शुरुआत करें? एक पड़ोसी भी जब हमारे पड़ोस में आता है ना, बिल्कुल नया, जिसके बारे में ना सुना था, ना कुछ पता था, ना देखा था उसको, लेकिन पड़ोसी हमारे पास रह रहा है अभी, तो क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो कैसे बनाते हो संबंध? छोटी छोटी शुरुआत करते, सामने आया, अंकल जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, फिर दोपहर में फिर देखा, अंकल जी गुड आफ्टरनून, छोटी शुरुआत। और जब ये विश कर रहे हैं हम, ग्रीट कर रहे हैं, उस ग्रीटिंग के दौरान एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और उस एनर्जी एक्सचेंज में मुझे फीलिंग आ रही है कि वो एनर्जी एक्सचेंज की क्वालिटी क्या है। अगर वो क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है तो मैं एक एक शब्द भी मेरा आगे बढ़ रहा है। मैं फिर कहती हूँ, अंकल जी आज हम है ना फलानी जगह जा रहे हैं, आप भी चलेंगे हमारे साथ? वो कहेगा नहीं नहीं अभी मुझे काम है। तो हम कोई जबरदस्ती उसको लेके जाने वाले नहीं थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जस्ट शेयरिंग कर रहे हैं, आपस में घुल मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे धीरे धीरे घुलते मिलते वहां से पता चलता है कि एनर्जी अच्छी क्वालिटी की आ रही है, तो एक दिन वो भी आ जाता है, हम दो दो नहीं रहकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। मेरे घर की सारी बातें उसको पता हो जाती है, और उसके घर की सारी बातें, तो कैसे शुरुआत की थी, और क्वालिटी अच्छी लगी तो यहां तक हमने शेयर कर दिया। बस उस परमात्मा के साथ भी आत्मीयता वाला संबंध जोड़ने के लिए ऐसी छोटी छोटी शुरुआत करनी है। रोज सुबह उठते ही उसके साथ हमारा कनेक्शन शुरू हो जाए, जैसे ही आंख खुलती है, क्योंकि वो मेरा पिता है, आत्मीयता है, तो उस परमात्मा को भी पिता के नाम पर बाबा कह सकते हैं ना, तो उसको कहे बाबा, शिव बाबा, गुड मॉर्निंग, और वहां से तो एनर्जी, यहां तो फिर भी चेक करना पड़ता है कि एनर्जी अच्छी है या नहीं, लेकिन वहां से तो चेकिंग की जरूरत है क्या, वहां से तो अच्छी ही आएगी। तो कहो उसको बाबा गुड मॉर्निंग, और बाबा गुड मॉर्निंग कहो माना वो उसकी छवि सामने आ जाएगी ना। किस रूप में अपने आप को स्टेबलाइज करूंगी, पहले मैं भी आत्म स्वरूप में आ जाऊंगी, मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को सामने देख रही हूँ, उसको विश कर रही हूँ शिव बाबा गुड मॉर्निंग। छवि किसको याद करते, तो छवि हम कहते हैं ना, छवि चाहिए, तो परमात्मा की छवि पता चली ना क्या है, वो ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु की छवि सामने आ जाए, सुबह सुबह उसके दर्शन हो जाए। हम कहते हैं ना, पता नहीं आज किसका सुबह सुबह मुंह देखा था, सारा दिन ही खराब हो गया। तो किसका मुंह देखना मना क्या, याद करते ही तो किसी की छवि सामने आती है ना, तो बात यह होती कि पता नहीं सुबह मैंने किसको याद कर लिया था, तो उसको याद कर लो ना, जहां सब कुछ क्या है, शुभ शुभ है, जहां सब कुछ क्या है, श्रेष्ठ है, पॉजिटिव है। तो ऐसी छोटी सी शुरुआत करो, सुबह उठते हो बाबा गुड मॉर्निंग बाबा, और फिर बाबा ने उस परमात्मा ने धरती पर आकर ये जो हमें सत्य ज्ञान बताया, जो रहस्य खोले, उस आपको कोई जो बातें नहीं पता हो आपको पता हो जाए, जो काम की हो उसके लिए शुक्रिया निकलेगा आपका या नहीं निकलेगा? शुक्रिया अदा करो, बाबा मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं, आपने मुझे आपसे मिलने की सही विधि बताई। इससे पहले भी मैं आपको याद करता था पर आत्म स्वरूप में टिककर नहीं याद करता था, और न ही मैं आपको इस ज्योति बिंदु रूप में देखता था, और आपके नाम पर कितनी छवियां मेरे सामने आ जाती थी, कभी एक कभी दूसरी, इसलिए मन भी नहीं दिखता था। लेकिन आपका शुक्रिया, आपने जीवन के सत्य से मुझे परिचित कराया, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, और आप भी मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु है। हम दोनों में समानता है, रूप में समानता है और गुणों में भी समानता है। मैं जिन गुणों की स्वरूप हूँ उसी गुणों का वो क्या है, परमात्मा सागर है। तो समानता है हम दोनों में। मैंने तो कितना अंतर खड़ा कर दिया था, आप भगवान मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ, लेकिन अब तो मुझे समानता का पता चला। और क्या समानता है, हम दोनों एक ही घर के रहने वाले हैं। आप भी परम धाम के निवासी, मैं भी परम धाम का निवासी। तो जितनी समानता होती उतनी क्या होती है, समीपता होती है। तो थैंक्स, ये बातें जो सीखी ना, भी जो रहस्य पता चले ना, उसके आधार से उससे बातचीत करो, और उसके साथ साथ जीवन की बातें भी उसके साथ शेयर करते चलो। तो इस शेयरिंग के दौरान, इस बात करने के दौरान, वो और आप क्या होंगे, आमने सामने होंगे, एनर्जी का क्या होता जाएगा, एक्सचेंज होता जाएगा, ये बैटरी क्या होती जाएगी, भरती जाएगी, और इस भरी हुई बैटरी से फिर मैं कर्म क्षेत्र में कर्म करती रहूंगी, और कर्म क्षेत्र में भी उसका साथ बनाए रखूंगी। क्योंकि जो जितना आत्मीय वाला संबंध होता है, जो हमारी यादों में बसता है, और यादों में बसना माना मेरे साथ रहना, ऐसा ही होता है। तो ये है परमात्मा से मिलने की विधि। तो चलें थोड़ा सा अभ्यास करें, चलो थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं हम अभी। ओम शांति, आपको हम चिंतन देते जाएंगे, विचार देते जाएंगे, उन्हीं विचारों को अपना विचार बनाना है, और बुद्धि से वैसे चित्र बनाना है, विजन देखना है, और संस्कारों के द्वारा उसको फील करते जाना है। तो तीन जो फैकल्टीज है आत्मा की, मन बुद्धि संस्कार, तीनों को यूज करना है, किसी एक को भी अकेला नहीं छोड़ना है। जब तीनों को हम यूज करते हैं तब एकाग्रता बनती है, और एकाग्रता की अगली कदम होती है अनुभूति। तो वो अनुभूति में हम खो जाएंगे, और उसी अनुभूति के दौरान हम भरपूर हो जाएंगे, आंखें खुली ही रखेंगे। ओम शांति। देखें अपने आप को, इस शरीर में मस्तक के बीचों बीच भ्रुकुटी सिंहासन पर, जहां हम सभी तिलक करते हैं, वहां स्वयं को देखें। मैं एक आत्मा हूँ। इस देह से भिन्न किंतु देह के भीतर मस्तक के बीचों बीच चमकने वाली एक चैतन्य ज्योति हूँ। एक प्रकाश का पुंज हूँ। देखें स्वयं के चमकते हुए जगमगाते हुए आत्मस्वरूप को। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा से शांति और प्रेम के वाइब्रेशन चहुं और फैलते हैं। देखे स्वयं को। मैं आत्मा ज्योति शांति और प्रेम के वाइब्रेशन से सज धज कर अब चलती हूँ अपने पिता परमात्मा के पास। देखे स्वयं को। आत्मा ज्योति मस्तक के बीचों बीच विराजमान है। वहां से निकलकर ऊपर की ओर उड़ान भरती है। देखे स्वयं को ऊपर जाते हुए पांच तत्वों की दुनिया, ये सूरज चांद वाली दुनिया, इस दुनिया में ऊपर ऊपर जा रही हूँ। सूरज चांद को भी क्रॉस करके और आगे निकल जाती हूँ और देख रही हूँ स्वयं को नीले आकाश से भी ऊपर उड़कर। मैं एक ऐसी दुनिया में पहुँच गई हूँ जहाँ चारों तरफ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है, जहाँ दूर दूर तक शांति ही शांति है। ऐसे विशाल प्रकाशित शांति से भरपूर अपने परम धाम में मैं आत्मा ज्योति जगमगा रही हूँ। और इस परम धाम घर में मैं देख रही हूँ मेरे ठीक सामने और एक ज्योति चमक रही है। ये परम ज्योति है। मेरे शिव बाबा है, मैं उनके सानिध्य में उपस्थित हूँ। देखे पिता परमात्मा की सुंदर छवि को, वो प्यार का सागर, शांति का सागर है, उससे निकलने वाली वो किरणें, वो वाइब्रेशन अपने और आते हुए देखे, उस एनर्जी को अपने भीतर भरते हुए महसूस करें और उसके साथ प्यारी सी बातचीत करें। बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा आपका रूप कितना सुंदर है, आपका चमकता हुआ स्वरूप, आपके प्यार भरे वाइब्रेशन जी करता है आपके साथ यही बैठकर ये अनुभव करती रहूं। बाबा आपने कितनी सुंदर विधि मुझे दी है, मुझे मेरा भी परिचय दिया, स्वयं पता परमात्मा का भी परिचय दिया और मिलन की इतनी सुंदर विधि भी सिखाई कि जिस विधि को प्रैक्टिकल करके आज मैं आपके सम्मुख आपके प्यार का अनुभव कर रही हूँ। मन में कोई बात हो, कोई प्रश्न हो, वो भी उसके सामने रखे। बाबा ये सब आपको देखना है, मैं आपको पाकर निश्चिंत हूँ। आपकी जो गाइडेंस होगी उसी अनुसार अब जीवन चलेगा। सब कुछ उसको देखकर निश्चिंत और हल्के हो जाए और उसकी सुंदर छवि को, उसकी प्यार भरे वाइब्रेशन को, उसकी शक्ति को अपने भीतर भरते हुए भरपूरता की अनुभूति के साथ, बाबा मेरे साथ है ऐसी अनुभूति के साथ लौट आए, उतरे उस दुनिया से नीचे की ओर, परम धाम घर से देखे स्वयं को नीचे उतरते हुए, नीले आकाश वाली दुनिया में अपने आप को देखे, कैसे मैं आत्मा पिता परमात्मा से प्यार और शक्ति भर कर नीचे उतरती आ रही हूँ और उतरते उतरते वापस अपने इस देह में मस्तक के बीचों बीच विराजमान। देखे मैं आत्मा परमात्मा का प्यार और शक्ति चारों तरफ वाइब्रेट कर रही हूँ। वो मेरा पिता मेरे साथ है। इस सुंदर अनुभूति के साथ मैं कर्म क्षेत्र के प्रति सजग होकर कर्म क्षेत्र में प्रवेश करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।